दिन भर 23 अप्रैल दिन मंगलवार, मैं हूँ सारिका सिंह। खत्म हुआ तीसरे चरण का मतदान, पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट, मिली ईवीएम खराब होने की शिकायत भी।
अगर इतने बड़े पैमाने पे मशीनें खराब होने की सूचना मिलेगी तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा।
श्रीलंका में मौत का आंकड़ा पहुंचा 310, सुरक्षा के सवालों के बीच सरकार में आरोप प्रत्यारोप।
The whole blame usually comes from the government and the head of the government people consider the crime minister, but it is the president.
और सुनिएगा बेगूसराय से उम्मीदवार कन्हैया कुमार क्या कहते हैं।
जो लोग इस देश को आज तबाह करने पे तुले हैं, एक्चुअली जो समाज को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, ये जो भाजपा के लोग हैं, इनके खिलाफ हम जो वोट है उसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं होने दे।
होंगी खेल की खबरें भी, पर उससे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में आज 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 117 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इनमें गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 74 सीटें निर्णायक मानी जा रही हैं। सीटों की संख्या के लिहाज से ये 2019 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा चरण है। श्रीलंका में रविवार को गिरजाघरों और होटलों में हुए 8 सिलसिलेवार आत्मघाती हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 310 हो गई है। पूरे देश में आज 3 मिनट का मौन रखा गया और आगे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। आज मालावी में मलेरिया के रोकथाम के लिए इजाद की गई एक उच्च गुणवत्ता वाले टीके का परीक्षण किया गया। इस टीके को विकसित करने में करीब $1 अरब रुपये का खर्च आया है और इसे बनाने में 30 सालों से ज़्यादा का वक्त लगा है। उम्मीद की जा रही है कि इस टीके की मदद से हर साल मलेरिया की वजह से होने वाली मौतों पर काबू पाया जा सकेगा। आने वाले सप्ताह में घाना और कीनिया में भी इस टीके का परीक्षण शुरू किया जाएगा। आरटीएस नाम का ये टीका दुनिया का पहला मलेरिया प्रतिरोधी टीका माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम करने वाले प्रोफेसर डेविड शैलनबर्ग को मलेरिया नियंत्रण के लिए काम करने का विशेषज्ञ माना जाता है। उनका कहना है कि सिर्फ इस टीके की मदद से मलेरिया पर काबू नहीं पाया जा सकता है, लेकिन इससे सुरक्षा तो जरूर बढ़ेगी।
Nobody is suggesting that this is a magic bullet. This is a vaccine which has been shown to add benefit in terms of preventing malaria.
कोई ये नहीं कह रहा है कि ये कोई जादुई गोली है। ये एक टीका है जो मच्छरों से सुरक्षा प्रदान करने वाले कारकों को और समृद्ध करता है। इस वक्त हमारे पास मलेरिया पर काबू पाने के लिए जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध हैं, ये उन्हीं में शामिल होने वाला एक और उपाय है। डेविड शैलनबर्ग के शब्द। म्यांमार की सुप्रीम कोर्ट ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के पत्रकारों की अपील को खारिज कर दिया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के इन 2 पत्रकारों पर रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा की जांच के दौरान राष्ट्रीय गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। म्यांमार की एक अदालत ने दोनों पत्रकारों को 7 साल की सजा सुनाई है। पत्रकार वो लोन और क्याव सो ओ पिछले 16 महीनों से जेल में हैं। रॉयटर्स के एशिया संपादक केविन क्रेलिकी ने बीबीसी को बताया कि वे इस मामले के आगे आने वाले पहलुओं को देख रहे हैं।
Wallon and Chosu have indicated to and through their lawyers that they don't want to continue with a further appeal.
Wallon और क्यावसो ने ये संकेत दिया है कि वे आगे किसी भी तरह की अपील नहीं करना चाहेंगे। आप जानते हैं, हम उन्हें आज़ाद देखना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान हमने अपनी ओर से सबसे अच्छा करने की कोशिश की। हमने वो सारी चीज़ें उनके सामने रखी जिससे ये पता चलता है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनका परिवार भी है जो म्यांमार सरकार से क्षमा के लिए दोबारा अनुरोध करे। केविन क्रेलिकी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बकिंघम पैलेस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून में 3 दिनों की यात्रा पर ब्रिटेन आने वाले हैं। ट्रंप बीते साल भी ब्रिटेन गए थे और उन्होंने महारानी से मुलाकात की थी, लेकिन वो यात्रा काम के सिलसिले में थी। उस यात्रा के दौरान ट्रंप को बड़े स्तर पर विरोध का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि अभी तक उनकी यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। बहुत हद तक संभव है कि वो अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करें। फिलीपींस में आए 2 भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गई हैं, जिसमें दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलीपींस की एक सुपरमार्केट भी भूकंप में धराशायी हो गई है, जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। बचावकर्मी उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है। बीबीसी समाचार।
दिनभर कार्यक्रम के साथ मैं हूं सारिका सिंह और मेरे साथ ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। आज दिन भर लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव और मतदान की हलचल रही। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर बंगाल तक लोगों ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने वोट डाला तो राहुल गांधी और अमित शाह और मुलायम सिंह यादव समेत कई दिग्गज नेताओं की चुनावी किस्मत का भी फैसला मतदाताओं ने कर दिया। आज 14 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों पर वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में आज 10 सीटों पर वोट डाले गए। सुबह से ही एक ओर मतदाताओं की लंबी लाइनें दिखी तो दूसरी ओर कई जगह से ईवीएम मशीनों के खराब होने की शिकायतों के साथ साथ कुछ जगहों से मतदान कर्मियों के साथ मारपीट की भी शिकायत मिली। हालांकि आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। पूरी जानकारी के साथ लखनऊ से समीरात्मज मिश्र।
सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही रामपुर, बदायूं, संभल जैसी तमाम जगहों से ईवीएम मशीनों की खराबी की शिकायतें आनी शुरू हुईं। तो करीब 12 बजे सैफई बूथ पर वोट डालने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके लिए सीधे राज्य सरकार पर आरोप लगाया।
अगर इतने बड़े पैमाने पे मशीनें खराब होने की सूचना मिलेगी तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? रामपुर में है और इसी तरह बदायूं में तो प्रशासन और मंत्री जी खुद बैठे हुए हैं और सुनने में तो आया कि आवास विकास में बैठे हुए हैं वहाँ मंत्री जी। अगर इस तरह हो रहा है तो कैसे उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा होगा? मैं समझता हूँ चुनाव आयोग इन सब चीजों को देखेगा, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
उत्तर प्रदेश में आज जिन 10 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से कई सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ समझी जाती हैं। हालांकि साल 2014 के चुनाव में इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 3 पर समाजवादी पार्टी ने। बदायूं में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद धर्मेंद्र यादव का आरोप था कि राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री वहां कैंप किए हुए हैं और निर्वाचन कार्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा शुरू से ही बेहद चर्चित रही सीट रामपुर में ईवीएम मशीनें खराब होने की सबसे ज्यादा शिकायतें आईं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का कहना था,
ये देखा जा रहा है कल रात जिस तरीके से पुलिस लोगों के घरों में घुसी, बाजार में लाठी चार्ज किया, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में करीबन 150 कार्यकर्ताओं के घर में पुलिस घुस गई, इसके बाद और क्या सोचें कि कोई गड़बड़ करे तो सीधे गोली मारें। अगर इस एक्सप्रेशन के साथ आप लोगों से वोट डालने को कहेंगे तो कौन घर से वोट डालने पुलिस की गोली खाने को निकले।
हालांकि रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह का कहना था कि कुछ जगहों से ईवीएम खराब होने की शिकायतें जरूर मिली थी लेकिन उन्हें तत्काल ठीक करा लिया गया और मतदान प्रभावित नहीं होने पाया।
I don't know where he has got the figure from. Basically, initially, average,
डीएम आंजनेय कुमार सिंह का यह भी कहना था कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं संभल में एक मतदान अधिकारी के साथ कुछ लोगों ने इसलिए मारपीट की कि वो कुछ लोगों को किसी खास पार्टी के पक्ष में वोट करने का दबाव बना रहे थे। इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है और मामले में FIR भी दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में ईवीएम मशीनों की खराबी और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की है। राज्य में करीब 57% मतदान की खबर है और राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक रहा है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने BBC को बताया,
ईवीएम जो चुटपुट खराब हुई हैं उनका समय रहते जहां भी जो शिकायत आई है उसका हमने निस्तारण किया है, समयबद्ध ढंग से किया है। कुछ जगहों पर चुटपुट कुछ करीब 20 मिनट 25 मिनट या इवन आधे घंटे लगभग उसके तहत तक मतदान रुका है लेकिन समय रहते इन पे वो कर लिया गया है, निराकरण कर लिया गया है। एक जगह कुछ जो है कन्फ्यूजन में एक तरह से कह सकते हैं कि बाता कही या झड़प सी हुई थी तो उसमें FIR भी लॉज किया गया है। बिलारी विधानसभा क्षेत्र जो संभल में पड़ता है मुरादाबाद जिले के, तो वहां पर भी कार्यवाही की गई लेकिन और जगहों पर चुनाव बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से चला है।
तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, SC/ST आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी उम्मीदवार रामशंकर कठेरिया जैसे कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
गुजरात के लिए आज का दिन सबसे अहम था। वहां की सभी 26 सीटों पर आज ही मतदान था। गुजरात में किस तरह की वोटिंग हुई ये जानकारी हमें दी BBC संवाददाता रॉक्सी गागदेगर छारा ने।
जी देखिए, वैसे तो ये पूरा जो आज चुनाव यहाँ पर हुए हैं वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए हैं। गुजरात का जो 5 बजे तक का इलेक्शन कमीशन का फिगर है उसके मुताबिक 58.95 यानी ऑलमोस्ट 59% 4 बजे तक का फिगर है कि 59% वोटर टर्नआउट रहा। इस बार ये जो कंटेस्ट था ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 से जरा अलग था। इस बार नरेंद्र मोदी सबसे पहले तो यहाँ से कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस बार 2014 में वे वडोदरा से कंटेस्ट कर रहे थे। इस बार जो बीजेपी के बड़े नेता कद्दावर नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अमित शाह हैं। अमित शाह गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ही सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए। 1998 से आज तक उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। एल के आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो इसी सीट से जीतते आए हैं। तो इस बार इस सीट पर अमित शाह का नाम लिखा गया है। तो एक ये जो कंटेस्ट गांधीनगर का कंटेस्ट वो जरा कहा जाता है कि वो वन साइडेड था, उसमें कांग्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानी नहीं जा रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे राज्य की बात करें तो 2014 से 2019 का जो चुनावी पूरी जंग है उसमें कांग्रेस जरा ज्यादा स्ट्रांग है। 2017 के जो असेंबली इलेक्शन का जो नतीजे थे उसके बाद कांग्रेस बहुत ज्यादा एक रिजुविनेट हुई, बहुत सारी यंग लीडरशिप कांग्रेस में आई जिसकी वजह से इस बार एक कंटेस्ट देखने को मिला है। कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे कि अमरेली, पाटन, बनासकांठा, आनंद, ये सारी जो सीटें हैं गुजरात की, इन सीटों पर एक क्लोज कंटेस्ट देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में।
आज के दिन की और चुनावी हलचल क्या रही बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है दिव्या आर्य।
शुक्रिया सारिका। अभी अभी चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता सुनकर मैं आई हूँ जो अभी जारी है, और उसमें बताया गया है कि 62% मतदान हुआ है अभी तक नहीं माफ़ कीजिए 6 बजे तक। तो ये जाहिर है ये संख्या बढ़ेगी, और पिछले दोनों फेजेस में करीबन 70% मतदान हुआ था, तो हो सकता है बिल्कुल वैसा ही हम टर्नआउट आज भी देखें। खबरों में कांग्रेस पार्टी ने आज चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आयोग के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने एक रात पहले ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर संदेह जाहिर किया था कि अपने नामांकन के बाद प्रधानमंत्री रैली करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को आदतन संहिता का उल्लंघन करने वाला बताकर आयोग से कहा कि अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वो जल्द कार्रवाई करें और प्रधानमंत्री के प्रचार पर प्रतिबंध लगाएं।
आज उनके चुनाव के बाद अपने वोट को दिखाकर इतने लंबे जलूस में निकले, वो भाषण दिए, राजनीतिक वक्तव्य दिए तुरंत वोट के बाद, इससे ज्यादा घोर, बड़ा स्पष्ट, पारदर्शी उल्लंघन आदर्श संहिता का कभी नहीं हुआ।
अभी चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना के मामले में सुनवाई हुई। ध्यान दिला दें कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस दाखिल किया था और दावा किया था कि राहुल गांधी ने रफाल मामले में कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश किया है और कहा है कि कोर्ट भी कह रहा है कि चौकीदार चोर है, ये जुमला। राहुल गांधी ने इस पर कल जवाब देकर इसके लिए खेद व्यक्त किया था और कहा था कि ये चुनावी स्लोगन है जिसे उन्हें कोर्ट के फैसले के साथ जोड़कर नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने अपील की थी कि इस मामले को अब यहीं खत्म कर दिया जाए, पर कोर्ट ने आज उनकी अपील को खारिज कर दिया और 30 अप्रैल को अवमानना के इस मामले की सुनवाई का फैसला किया। 30 अप्रैल को ही वो रफाल मामले की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई भी करेंगे।
जी बहुत शुक्रिया दिव्या इस पूरी जानकारी के लिए। पूरी बात
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और खबर श्रीलंका से, जहां रविवार को हुए आत्मघाती बम हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 310 हो गई है। मृतकों में ज्यादातर श्रीलंका के लोग हैं। मारे गए लोगों में भारत, ब्रिटेन, डेनमार्क, सऊदी अरब, चीन और तुर्की के भी नागरिक शामिल हैं। आज मृतकों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच हमले की पहले से ही चेतावनी मिलने के बाद सरकार की ओर से कोई कदम ना उठाने के आरोपों पर श्रीलंका में हंगामा मचा हुआ है। राष्ट्रपति सिरिसेना के सलाहकार शिराल लखथिलाका ने बीबीसी से कहा कि इस बात की जांच होगी कि सरकार की ओर से कोई चूक हुई या नहीं। श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजिता सेनारत्ने ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि सरकार के भीतर आपसी विवाद की वजह से प्रधानमंत्री को खुफिया जानकारी नहीं दी जा रही।
The whole blame usually comes to the government, and the head of the government people consider the prime minister. But it is the president who was aware. But according to
सेनारत्ने कह रहे थे कि सरकार को दोष दिया जाता है। लोग सोचते हैं प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है, पर यहाँ सारी जानकारी राष्ट्रपति के पास थी। इसके लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिम्मेदार हैं, रक्षा सचिव जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। श्रीलंका में हुए हमलों के 3 दिन बाद आईएस ने वेबसाइट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बीबीसी इस दावे की पुष्टि नहीं करती। बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय कोलंबो में मौजूद हैं। कुछ देर पहले मैंने उनसे फोन पर संपर्क किया और दिन भर की घटनाओं पर जानकारी ली।
सिचुएशन काफी टेंस है ग्राउंड पे। आज भी हमें खबर मिली कि पुलिस कोई वैन या कोई व्हीकल्स को ढूंढ रहे थे। जैसे कि कल हमें पता चला कि एक जो वैन थी जिसके अंदर बम थे और वो एक्सप्लोड हो गई, तो हमें ये जानकारी मिली कि पुलिस इस तरीके के जो व्हीकल्स हैं उनको आज भी ढूंढ रहे थे। लेकिन मैंने आज का मतलब काफी जो दिन है वो निगम्बो में बिताया है। ये कोलंबो के उत्तर में एक टाउन है और वहां पे निगम्बो में जो सेंट सेबेस्टियन चर्च है, ये माना जा रहा है कि यहाँ पे सबसे डेडलीस्ट बॉम्बिंग हुआ था, कि सबसे ज्यादा जो जाने हैं यहाँ गई थी। इस चर्च में सुबह एक जो मास फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार काफी लोगों का किया गया, उनके जो शव है कॉफिन्स में चर्च के अंदर लिए गए थे और काफी लोग भी वहां आए थे और उसके बाद उनका बैरियल होगा। और हम एक ऐसे परिवार से मिलने गए हैं जिसमें एक्चुअली जो सारा परिवार है वो ईस्टर संडे के जो बॉम्बिंग में वो मारा गया था। एक आदमी रंगना फर्नांडो, उनकी बीवी और उनके 3 बच्चे और एक जो बच्चा था वो 11 महीने का एक छोटा बच्चा था, तो उन सब की जाने गए थे। उनके घर में हम गए थे। आप सोच सकते हैं कैसा माहौल होगा वहाँ पे। जो क्रिश्चियन प्रीस्ट है वो आए थे, वो हिम्स पढ़ रहे थे और फिर उनके शव जो है वो वहाँ से लिए गए। उनकी जो बहन थी वो बहुत रो रही थी, बहुत भावुक हो गई थी और वो कह रही थी उनके जो वहाँ पे जो नीसेस और नेव्यूज थे उन जिनकी जाने गई थी, तो उनसे वो कह रही थी कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ।
बहुतों ने बहुत कुछ खोया है, अपनों को खोया है। योगिता, एक बात बताइए, जब इस तरह की इन फाइटिंग की बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि एक हेल्थ मिनिस्टर ने कहा अपने बयान में कि प्रधानमंत्री को पूरे जो सिक्योरिटी की जानकारी थी या खुफिया जानकारी थी उससे अलग रखा जा रहा था, तो ये किस तरह की अब बात सामने आ रही है?
जी, श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री और यहाँ के जो राष्ट्रपति है, ये 2 गुट बने हुए हैं और ये पहली बार नजर आया अक्टूबर 2018 में, जब कि हमने देखा कि जो मैत्रीपाल सिरिसेना श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने अचानक से प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को अपनी सीट से निकाल दिया। कोर्ट कचहरी के बाद वो वापस अभी प्रधानमंत्री के पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पे ऐसे डिवाइड होता है कि जो सिक्योरिटी है, डिफेंस है, मिलिट्री या इंटेलिजेंस, ये सब जो सरकार के विभाग है ये राष्ट्रपति के अंडर आते हैं और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और जो उनकी कैबिनेट है वो बोल रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो ये आरोप हम जरूर देख रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, काफी सारे दूसरे मंत्री जो है वो भी लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आज ये भी बोला है कि इसकी जांच होगी कि क्यों ये जो इंटेलिजेंस इनपुट थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
कोलंबो से जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय। साल 2002 में गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की राशि बढ़ाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बारे में और जानकारी के लिए मैंने बात की बीबीसी संवाददाता सुचित्रा मोहंती से।
देखिए, मैं आप बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर गुजरात सरकार को ये निर्देश दिया है अपने इंटरिम डायरेक्शन पे कि 50 लाख का जो मुआवजा है वो बिल्किस बानो यानी कि बिल्किस याकूब रसूल को दिया जाए। मैं ये यहीं से बताना चाहता हूँ, पहले सुप्रीम कोर्ट 5 लाख का मुआवजा दिया था फिर बिल्किस याकूब रसूल को, यानी कि वो जो गैंगरेप पीड़ित थी और उसको 5 लाख का मुआवजा काफी नहीं था और बिल्किस याकूब रसूल ने मना कर दिया था, साफ तौर पर मना किया था 5 लाख का मुआवजा लेने से। और उसके बाद फिर सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद आप आज की डेट तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए, जैसे ही सुनवाई हुई उसके बाद तुरंत कोर्ट ने आदेश दिया 50 लाख का मुआवजा देने के लिए, और कोर्ट को लगा 5 लाख का मुआवजा था वो सही नहीं था। जिस तरीके से उनके साथ ब्रूटलिटी किया गया था उनको कोर्ट को लगा, और कोर्ट की खंडपीठ ने, 3 जज की खंडपीठ ने ये तय किया कि 50 लाख का मुआवजा देने के लिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है गुजरात सरकार को कि उनको सरकारी नौकरी दिया जाए और गवर्नमेंट अकोमोडेशन दिया जाए। यानी कि कुल मिला के अब हम लोग ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एकदम साफ है कि इनको जितना मुआवजा दिया जाए देना कम से कम देना चाहिए, और ये मुआवजा कम से कम 2 हफ्ते के अंदर देना चाहिए। गुजरात सरकार को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये खंडपीठ का आदेश था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की खंडपीठ ने किया है।
जी, काफी सालों से ये मामला चल रहा है सुचित्र, एक बार अगर आप थोड़ा इस बारे में बता सकें बैकग्राउंड हमारे श्रोताओं को।
जी देखिए, 2002 का गोधरा रायट हुआ था, सबको याद होगा, गोधरा रायट जैसे ही हुआ था, गोधरा रायट के बाद बिल्किस बानो के साथ बहुत ही जाती हुआ था, यानी कि उनके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी, और गैंगरेप की घटना के दौरान उनकी एक बच्ची की डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके फैमिली के 4-5 लोगों की मौत हो गई थी इस मामले में, कुछ इरेट मॉब आके उनके फैमिली के साथ मार दिए थे, और इसी मामले के दौरान उनके साथ गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आए थे, गुजरात हाईकोर्ट भी आए थे, बहुत सारे पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, और गुजरात हाईकोर्ट के बाद मुंबई हाईकोर्ट को केस ट्रांसफर किया गया क्योंकि इस केस में उनको इंसाफ मिलने वाला नहीं था। तो इन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में ये अर्जी लगाई थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, और इसलिए गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर मुंबई हाईकोर्ट को केस किया। मुंबई हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया, इसमें 4 पुलिस अधिकारी थे और इसमें से एक आईपीएस अधिकारी भी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में। और आखिर में इनकी जो सबूत के साथ छेड़छाड़ करने में मामला आया, एक आईपीएस अधिकारी का जितने सारे रिटायरमेंट बेनिफिट थे उनको भी गुजरात सरकार ने मना कर दिया।
इस पूरे मामले पर हमने बिल्किस बानो के पति और उनकी वकील से भी बात की। उनका मानना है कि कोर्ट का ये फैसला बिल्किस के लिए राहत लेकर आया है। सुनिए कमलेश मठेनी की रिपोर्ट।
गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार की पीड़ित बिल्किस बानो को 17 साल की लड़ाई के बाद आज वो मिला जिसने उन्हें और उनके परिवार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए बिल्किस बानो के पति याकूब ने कहा कि आज बिल्किस के साथ न्याय हुआ है।
आज हमारे साथ और बिल्किस के साथ जो भी न्याय हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया। हम खुश है, बिल्किस भी खुश है, परिवार भी खुश है। लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा जो परिवार को साथ में लेके चलने में बहुत सारी मुश्किलें हुई है, लेकिन इतना ही बताना चाहता हूँ मैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो चुकादा दिया है हमारे देश की बड़ी अदालत ने, उससे हम खुश है।
ये थे बिल्किस बानो के पति याकूब। वहीं बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने इसे संतोषजनक फैसला बताया है। उनका कहना है कि कुछ जख्मों की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इससे बिल्किस को नई जिंदगी शुरू करने में मदद मिलेगी।
कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं जो किसी भी किस्म के कॉम्पनसेशन से भरे नहीं जा सकते, फिर भी एक सिंबल होता है कॉम्पनसेशन, 1 उस पर्सन को रिहैबिलिटेट करने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी होता है एज अ मैसेज टू पब्लिक और द गवर्नमेंट एट लार्ज कि अगर आप फेल होते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। आई वुड कंसिडर इट मोर एज द फाइन इम्पोज अपॉन द गुजरात गवर्नमेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर ये सब मिल जाता है जो कोर्ट ने ग्रांट किया, कोर्ट ने केवल 2 वीक्स के अंदर कॉम्पनसेशन देने के लिए बोला है, देन बिल्किस शुड बी हैप्पी कि अभी उसको अपने आप को रिहैबिलिटेट करने का, अपने आप को सेटल करने का मौका दे दिया है कोर्ट ने।
ये थी बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद के पास रणधीकपुर गांव में एक भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला कर दिया था। करीब 20 साल की बिल्किस के सामने ही उनकी 3 साल की बेटी सालेहा की भी हत्या कर दी गई थी। ये मामला गुजरात में निचली अदालत में चलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचा था। कोर्ट ने मई 2017 के आदेश में रेप और हत्या मामले में 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी, साथ ही 5 पुलिसकर्मियों और 2 डॉक्टरों को भी दोषी पाया था। अब बिल्किस बानो और उनके परिवार को मुआवजा मिलने का इंतजार है। कमलेश मठेनी, BBC दिल्ली।
तो सालों से कोर्ट में ये मामला चल रहा है और अब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है। और कभी JNU में छात्र नेता के रूप में मशहूर हुए कन्हैया कुमार इस बार चुनावी सुर्खियों में भी हैं। वो बेगूसराय से चुनावी मैदान में हैं। उनकी चुनौतियों और उम्मीदों पर बात की BBC संवाददाता रजनीश ने।
देखिए क्या है कि उम्मीदों पे ही कहते हैं दुनिया टिकी होती है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ लोगों को उम्मीद है। कई लोकसभा क्षेत्र में जब आप जाकर देखेंगे, घूमेंगे और बात करेंगे, लोगों के बीच में उम्मीद भी नहीं है। और पास ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही है, सबसे बुरा होता है हमारे सपनों का मर जाना। इन आंखों में सपना होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इन सपनों को पूरा कर दूंगा।
इस ट्रस्ट को कैसे संभालेंगे?
देखिए निराशा, आप मुझे इस बात का ध्यान रखना है। 5 साल इतनी बार लोगों के बीच में जाना है, कि चुनाव में शायद जाने की जरूरत न पड़े।
सुबह मैं तनवीर साहब से मिलने गया था, तनवीर हसन से। मैंने उनसे पूछा कि आप जब जाते हैं लोगों के बीच तो लोग वन टू वन मीटिंग में कहते नहीं है कि आप दोनों को साथ हो जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कई लोगों ने कहा मुझे कि साथ हो जाना चाहिए।
देखिए ये हम लोग भी उम्मीद करते थे कि इस देश में एक यूनाइटेड फ्रंट बनेगा, और ठीक है इलेक्शन में नहीं बना है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के बाद भी ये यूनाइटेड फ्रंट बने, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है। लेफ्ट, प्रोग्रेसिव, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये जितने तरह के लोग हैं सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। ठीक है हमारे डिफरेंसेज होते हैं, उन डिफरेंसेज को हम रिड्यूस करेंगे। 100 बात में हो सकता है कि हमारी 90 बात पर सहमति नहीं हो, लेकिन 10 बात पे तो सहमति हो।
एक नहीं, आपने वादा किया था कि आप एंटी मोदी वोट बटने नहीं देंगे, लेकिन इस चुनाव में बटता दिख रहा है।
जो लोग इस देश को आज तबाह करने पे तुले हैं, एक्चुअली जो समाज को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, ये जो भाजपा के लोग हैं, इनके खिलाफ हम जो वोट है उसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं होने देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। ये
तेजस्वी की रैली में अभी गया था, वो आपका नाम नहीं लेते हैं ना आप उनका नाम लेते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं।
नहीं देखिए ये बात आप समझ लीजिए कि आज इस देश में लड़ाई जो है वो दो विचारधारा के बीच है। ये लड़ाई सीधे तौर पे नोट तंत्र बनाम लोकतंत्र की है, ये लड़ाई सीधे तौर पे हक बनाम लूट की है, ये लड़ाई सीधे तौर पर सच बनाम झूठ की है। इसीलिए किसी व्यक्ति को टारगेट करना, किसी पार्टी को टारगेट करना, मैं समझता हूँ उससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा।
एक आखिरी सवाल आपसे कन्हैया, बार बार जब आपकी बात होती है तो आपकी जाति की बात होती है, आपको नहीं लगता कि आपको इस जाति से फायदा मिल रहा है फिर नुकसान हो रहा है?
देखिए मैं उस चीज को काउंट ही नहीं करता हूँ, तो फिर उससे मुझे क्या ही फर्क।
इससे मुक्त कैसे हो पाएंगे, जातीय पहचान को तो लोग उठाते रहते हैं।
वो जिस दिन हम मरेंगे तो फिर इसका विश्लेषण कीजिएगा।
तो कन्हैया कुमार से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी रजनीश। और अब खेल की इस खबरों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में है आदेश कुमार गुप्त। आदेश जी बताइए क्या स्पोर्ट्स अपडेट है आज?
जी सागर जी, वैसे तो सागरिका जी,
सारिका
जी क्षमा कीजिए, चेन्नई में थोड़ी देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद में होगा आईपीएल में। लेकिन अगर इससे पहले दूसरी खबरों की बात की जाए तो चीन में जारी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 65 किलो भार वर्ग में दुनिया के नंबर एक पहलवान बजरंग पूनिया ने फाइनल में ईरान के पेमन ब्यूकागा बियाबानी को 6-0 से हराया। इसके अलावा बैंकॉक में जारी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के शिवा थापा और महिला वर्ग में एल सरिता देवी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इनके अलावा आशीष कुमार भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन 91 किलो भार वर्ग में हिस्सा ले रहे डवन तबर क्वार्टर फाइनल में जॉर्डन के हुसैन इशाएश से 5-0 से हारकर बाहर हो गए। और अब बात आईपीएल की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स का सामना थोड़ी देर बाद सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ताज़ा खबर यह है कि चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस टीम की अभी तक आईपीएल में 14 अंक हैं और सुपर फोर में पहुंचने के लिए इसे केवल 2 अंकों की ज़रूरत है, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में इसको हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मुकाबले में तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ जब अंतिम ओवर में 26 रनों की ज़रूरत थी तब धोनी के बल्ले से 24 रन निकले थे और ऐसा लगता था कि वो मैच को जिता देंगे, लेकिन उमेश यादव की एक धीमी गति की गेंद को वो पढ़ नहीं पाए और जिस तरह से शार्दुल ठाकुर रन आउट हुए तो केवल 1 रन से चेन्नई हारी। और दूसरी तरफ हैदराबाद जिसके 9 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक हैं, लेकिन वो बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो पर। उन्हें उम्मीद है कि उनके गेंदबाज राशिद खान और खलीद अहमद अगर अच्छी गेंदबाजी करें तो वो टीम अच्छा कर सकती है। वैसे इस टीम की तारीफ करनी होगी कि पिछले जिस तरह से इन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं तो सुपर फोर की दौड़ में शामिल होकर ये 4th नंबर पर हैं। अब आज देखना होगा कि क्या चेन्नई वो मैजिक अंक 16 हासिल कर पाती है या नहीं जिससे वो सुपर फोर में जाएगी, या उसका इंतजार थोड़ा और बढ़ेगा।
वाह आदेश जी, क्या पावर पैक्ड इन्फॉर्मेशन आपने खेल प्रेमियों को दी, बहुत शुक्रिया। और अब चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में आज 13 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की 117 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। श्रीलंका में रविवार को गिरजाघरों और होटलों में हुए 8 सिलसिलेवार आत्मघाती हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 310 हो गई है। बकिंगहम पैलेस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून में 3 दिनों की यात्रा पर ब्रिटेन आने वाले हैं। फिलीपींस में आए 2 भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गई हैं, जिसमें दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप की वजह से अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान के नए सैन्य शासक ने बीबीसी को बताया कि वे अपने सैनिकों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह के बल प्रयोग की अनुमति नहीं देंगे। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आप देख सकते हैं bbchindi.com। सारिका सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।